ओम शांति। एक बार हम सभी मिल करके उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसे हम सब ने सुना है ब्राह्मण वत्स सब यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ मिल करके किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की तरफ। ओम शांति ही वह महामंत्र है जिसके द्वारा हम सभी ये महसूस करते हैं कि हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, हम खुद भी परिवर्तित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी परिवर्तित हो करके इस संसार को भी परिवर्तित कर देंगे। तो इसीलिए ओम की ध्वनि ये हमारा पहला लेसन भी है और अंतिम लेसन भी है। और ये संस्कार परिवर्तन जो बाबा ने हम सबको दिया है, परिवर्तन ही वास्तव में पूरे विश्व के परिवर्तन का आधार है, हमारा अपना परिवर्तन। तो ये परिवर्तन तो हम सब जानते हैं, सभी में परिवर्तन हुआ है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। जब भी हम ज्ञान में आते हैं पहले दिन से ही हम कुछ ना कुछ परिवर्तन का अनुभव करते हैं। और ये अनुभव जो है परिवर्तन, ये जितना धीरे धीरे गहरा होता जाता है उतना उतना आगे परिवर्तन की राह भी खुलती जाती है। हम सब उसी मार्ग के राही हैं जिस मार्ग पर ब्रह्मा बाबा ने भी कभी पहले दिन से चलना शुरू किया। बाबा ने भी ये महसूस किया, जब बाबा को अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव हुआ, हर एक के परिवर्तन क्या विधि आधार सब अलग अलग है। किसी को साक्षात्कार के द्वारा परिवर्तन होता है, किसी को ज्ञान सुनने के आधार पर, लेकिन सभी का परिवर्तन का एक आधार है स्मृति का परिवर्तन। जब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि तुम देह नहीं आत्मा हो, ये ही पहला परिवर्तन था जिससे सारे परिवर्तन की श्रृंखला शुरू हो गई। और जितना जितना यह परिवर्तन हमारे जीवन में गहरा आता जाता है, स्मृति का परिवर्तन कि मैं देह नहीं हूं, ये देह तो मैंने पार्ट प्ले करने के लिए ली हुई है, इसके द्वारा मैं अपना रोल निभा रही हूँ। तो इस स्मृति के परिवर्तन को दिन में कई बार हम सब लोग रिपीट भी करते हैं और उसकी गहराई में भी जाते हैं। और जितना जितना यह परिवर्तन हमारी स्मृति में आता जाता है, उतना उतना हमारा सूक्ष्म परिवर्तन भी होता जाता है। वो है वृत्ति का परिवर्तन। तो यदि हम संसार को परिवर्तन करने की बात समझते हैं, तो वो तो पहले बाद में आती है। पहले हमारा अपना परिवर्तन, स्व परिवर्तन आता है। हम बदलेंगे, संसार बदलेगा। तो स्मृति का परिवर्तन जब धीरे 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 जितनी बार हम अपने कार्य व्यवहार में लाते हैं, जितनी बार योग के समय दूसरे के भ्रकुटी में देखकर अनुभव करते हैं, जितनी बार इसका अभ्यास करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ने भी लिख लिख कर, आप सबने सुना यह पुराने हैं, लिख लिख कर परिवर्तन किया। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, जो युगल थी निर्मला आत्मा है, उनकी बेटी नारायण आत्मा है, बेटा आदि आदि। तो जहां जहां मनुष्य की जिस व्यक्ति में बुद्धि जाती है, उसमें जितना जितना वो अभ्यास करता है परिवर्तन, तो उससे डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। यानी कि जितनी भी हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा होती है कि किसी की देह की तरफ बुद्धि न जाए, तो उतना उतना वो अनुभव होता जाता है। और फिर वो वृत्ति के अंदर सूक्ष्म वृत्ति और भी सूक्ष्म है, वो वृत्ति के अंदर जाता है। और इसीलिए जब ये स्मृति हमारी जितनी परिवर्तित होती जाती है, तो जीवन में परिवर्तन का अनुभव होता है। और जीवन में परिवर्तन का अनुभव कभी कभी तो धीरे 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 होता है, और कभी एकदम बहुत, कोई बाबा की पॉइंट ऐसी होती है, कोई जीवन में घटना होती है, उससे एकदम तेज परिवर्तन आता है। लौकिक में भी ऐसा ही हम सब ने सुना है, बहुतों की कहानी, हाँ, सूरदास की कहानी सुनी है कि बस जब उसके मन में ऐसे विषय विकार वगैरह बहुत उठते थे, तो इसलिए उसने अपनी आंखों को जैसे फोड़ लिया कि आंख देखेंगी नहीं। बाबा भी कहते हैं ये सबसे क्रिमिनल सेंसिटिव अंग है। तो इसीलिए उसने भी ये सोचा, ये आंख फोड़ लूंगा तो बिल्कुल मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आंख फोड़ने के बाद भी उसने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन सब रचनाओं में यही आता है, हे मन, तू तो बहुत पापी है, तू प्रभु की तरफ नहीं जाता, विषय विकारों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, वैभवों की तरफ जाता है। और इस कारण से उसका वो परिवर्तन नहीं हो पाया। अपना रचनाएं उसने उसके बाद की, कुछ तो फर्क पड़ा होगा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन स्व का उसका नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, तुलसीदास का भी सबने पढ़ा है, उसमें भी जब उसका पत्नी चली गई थी मायके, और वो तो सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ा, तो उसकी पत्नी ने भी उसे थोड़ा धिक्कारा और कहा कि अगर इतनी प्रीत आपकी प्रभु के साथ होती तो बहुत जीवन में प्राप्ति हुई होती। तो वो क्षण उसके परिवर्तन का था। तो हम ये न सोचें कि मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूं और या चल रही हूं, परिवर्तन तो हुआ है तभी आए हैं, लेकिन जो परिवर्तन जितना बाबा परिवर्तन चाहता है उतना परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है। लेकिन अगर हम अपना एफर्ट छोड़ते नहीं है, मेहनत करना रोज, जो बाबा अमृत वेले से लेकर के जो वरदानों का झोली भरने का समय है, उस समय से लेकर अगर हम नियमित रूप से करते जाते हैं तो धीरे 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 इतना गहरा परिवर्तन हो जाता है अंदर तक, जो वृत्ति के अंदर तक पहुंच जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चों में परिवर्तन तो आया है लेकिन अभी वृत्ति और स्वप्न तक का परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए अभी आवश्यकता है, जो बाबा ये किया चाहता है, वृत्ति और स्वप्न तक का भी परिवर्तन। जैसे कभी भरत हरि का भी सुनते हैं, राजा था, उसे भी वैराग्य हुआ, सारी सुविधाएं और वैभव भोगने के लिए थे, लेकिन उसने अनुभव किया और लिखा भी, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात अपने अनुभव के आधार पर उसने लिखा कि हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन धीरे 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 भोग हमें भोगते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति शुरू में सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू, शराब कुछ भी पीता है, थोड़ा समय के लिए भले वो कुछ आनंद का अनुभव करता हो, लेकिन धीरे धीरे उसके गुलाम हो जाता है और फिर वो भोग हमें भोगने लगते हैं, हमें अति कमजोर कर देते हैं, शक्तिहीन कर देते हैं। और क्या उसने अंत में अपना यही अनुभव लिखा कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि धीरे 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 हमारी तृष्णाएं, इच्छाएं वो जीर्ण यानी कमजोर नहीं होती, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, लेकिन तृष्णाएं इच्छाएं और जवान होती चली जाती है, बलवती होती चली जाती है और वो कमजोर नहीं होती। तो उस राजा ने जीवन के साथ कुछ भोग कर भी लेकिन यही अनुभव किया। और उसके जीवन में ये भी प्रसंग एक आता है कि ऐसे ही वो सब त्याग करके जा रहा था, रात्रि का समय था, चांदनी रात थी, तो सड़क पर उसे कोई चमकती हुई चीज एकदम बहुत नजर आई। और जब चमकती हुई चीज नजर आई तो उसने भले सब त्यागा था लेकिन वृत्ति तक का त्याग नहीं हुआ था, तो तुरंत ही उसने झुक करके उसे उठाने की कोशिश करी। तो वो क्या थी? वो पान की पीक थी, किसी ने पान खा के उसे थूका होगा और वो जैसे चांदनी रात में चमक रही थी, तो पान की पीक। तो उसे खुद ही अपने ऊपर एकदम घृणा सी आई कि देखो मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, राजा ही त्याग कर दी, और लेकिन अभी तक भी मेरी वृत्ति जो है उसमें परिवर्तन बाकी है, अभी तक भी मेरे अंदर सोने चांदी हीरे उन सबका जैसे संकल्प बाकी है। इसीलिए उसे तब वैराग हुआ और तब वो बहुत महान कवि भी बना, भक्त भी बना और ईश्वर को पाने की जो मार्ग था तब अंदर से खुला। भले ऊपर से उसने त्याग कर दिया था लेकिन अंदर से उसे ये अनुभव हुआ कि हाँ अब ये आवश्यकता है अंदर का परिवर्तन, तो उसने अपने अंदर झांक के देखा। तो हमें भी समय प्रति समय एकांत में, कभी महीने में, मास में एक बार पूरा एकांत रखें, सप्ताह में कुछ घंटों का एकांत से हम शुरू करें, 3 घंटे का एकांत, 6 घंटे का एकांत, बिल्कुल, और उसके अंदर अपने अंदर झांक करके देखें कि आ वास्तव में जो बाबा मेरे अंदर अंदर का परिवर्तन चाहते हैं वो होता चला जा रहा है। और जितना ये अंदर का परिवर्तन होता चला जाता है वो अंदर का परिवर्तन ही जैसे परमानेंट परिवर्तन है। इसीलिए कहा गया है हम सब, एक तरफ तो बाबा ने योग का दिया है एकांत करो, एक के अंत में एक का बताया है, एक की स्मृति में, और दूसरा संगठन में रहने का भी कहा है। हम सब संगठन में भी रहते हैं क्योंकि सतयुग के आदि से हम कोई अकेला राजा तो बनेंगे नहीं, संगठन में ही होंगे, तो यहाँ पर भी संगठन में रहने का। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि का विकास जो होता है वो एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। तो चरित्र का विकास संगठन में, जब हम संगठन में रहते हैं तो हमारा अपनी तरफ कितना ध्यान रहता है, बस कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जो संगठन में सबको पता चले हमारी कमी कमजोरी, तो वो भी ध्यान रहता है। लेकिन बुद्धि के लिए विचार सागर मंथन करने के लिए वो एकांत की जो जरूरत है वो बुद्धि का एकांत, तो मन का एकांत भी ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर भी जब आप आते हैं ना तो सब कहते हैं भाई बाहर का भी एकांत रखो अंदर का भी एकांत रखो, और साथ साथ इन सब का शुरू में मदद का आधार है मोबाइल का एकांत। शुरू में जब हम संकल्प करते हैं भाई आज अभी 6 घंटे तक मुझे ना कोई फोन रिसीव करना है ना करना है, पहले से ही ऐसा प्लान बना करके अगर कर देते हैं तो फिर बुद्धि हमारी इधर उधर नहीं भटकती है। तो इसीलिए एक ये आवश्यक बात है इस एकांत की। तो स्वपरिवर्तन में स्मृति से जो शुरू होता है वो वृत्ति तक धीरे धीरे अंदर जाता है। इसीलिए वृत्ति व्रत यानी सर्किल बोला जाता है, और वृत्ति में जो परिवर्तन होता है वो वृत्ति से ये जीवनी हमारी वृत्ति से कृति तक की यात्रा है। कृति माने कर्म की, जो कर्म हम करते हैं, तो वृत्ति में जब परिवर्तन होता जाता है तो धीरे 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 वाचा में भी, और वो ये वृत्त है संकल्प जैसे कहते हैं ना, मन वचन कर्म, मन बुद्धि संस्कार कर्म में, तो मन बुद्धि संस्कार और संस्कार और उनके बीच में ये वृत्ति भी है। वृत्ति में जितना सूक्ष्म परिवर्तन होता जाएगा उतना मन के अंदर भी परिवर्तन। तो थ्योरेटिकली तो हम समझ लेते हैं कि ये मन, ब्रह्मा बाबा ने भी यही महसूस किया जब ज्ञान में आ गए, ज्ञान में आने के बाद साक्षात्कार वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा ने महसूस किया ये मन तो मेरा अभी भी भाग जाता है, कभी परिवार की तरफ कभी बिजनेस की तरफ कभी कोई वस्तु की तरफ अलग अलग भाग जाता है। तो बाबा ने क्या किया, यहाँ पर पहले तो बाबा की 2 डायरियां रखी हुई थी, तो बाबा ने 1 डायरी में तो यही लिखा, मन को पत्र लिखा, और हे मन मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, तू मेरा कर्मचारी है, मैं राजा हूं तुझे मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन हे मन तूने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया और तू बलशाली हो गया कि तू जहां जहां भागता रहा मैं आत्मा राजा होकर भी तूने मुझे कमजोर कर दिया और मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तेरा अनुकरण करता रहा। लेकिन हे मन, जब बाबा ने जब ज्ञान में आने के बाद जब अभ्यास किया तब बाबा ने यह अनुभव किया कि मन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो वो विधि बाबा ने बताई कि हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा कर्मचारी है, तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, न कि मैं तेरे कहने पर चलूंगा। तो इस तरह बाबा ने कहा और ये पत्र लिखा, और ऐसा ही पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमजोर कर दिया था आत्मा को, लेकिन अब मैं कह देता हूं कि तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। और बाबा ने ये रियलाइज किया कि ये क्यों मेरे कहने पर नहीं चलते थे, इतने समय तक ये शक्तिशाली कैसे हो गए, मुझे कमजोर क्यों कर दिया। तो बाबा ने अनुभव किया कि मैं अपनी सीट पर स्थित नहीं रहता था। तो जो बाबा ने सीट दी है सोमान की सीट, जब व्यक्ति अपनी पावर की सीट पर स्थित होके कोई ऑर्डर करता है तो सब उसकी बात मानते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी हो, जब वो सीट पर बैठा हुआ होता है, ऑर्डर करता है, तो सब उसकी बात मानते हैं। और जब वो रिटायर हो जाए या ट्रांसफर हो जाए या कहीं और चला जाए, तो तब उसकी बात कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो सीट पर ही नहीं है। इसी तरीके से बाबा ने महसूस किया कि सोमान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर करो तो शक्तियां तुरंत हाजिर हो जाएंगी। कोई भी बात, हम लोग क्या करते हैं, मानो कभी कोई स्वभाव संस्कार की टकराव हो रही है, किसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, मेरे में सहन शक्ति आए, लेकिन सहन शक्ति नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम आवाहन तो कर रहे हैं, लेकिन हम सुमान की सीट पर बैठकर आवाहन नहीं कर रहे हैं। और जब सीट पर नहीं बैठे हैं तो शक्ति बात नहीं मानती, इसलिए उसका आह्वान नहीं हो पाता। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, दूसरी डायरी में भी बाबा ने ये लिखा कि रोज रात्रि को सोने से पहले इनकी दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार, इनकी दरबार लगाओ, उसका मतलब चार्ट लिखो और रोज रात को देखे कि आज इन्होंने मेरा कहना माना, मैंने उस वक्त मन को ये ऑर्डर किया, उधर नहीं देखो, लेकिन मन ने उधर देख लिया, इसका मतलब मन ने मेरा ऑर्डर नहीं माना, इसका मतलब मैं सोमान की सीट पर उस वक्त स्थित नहीं था। तो इसीलिए बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में भी कहा है, थोड़े दिन पहले भी, बाबा ने सोमान की इतनी बड़ी माला दी है, इतने सोमान दिए है, मैं मास्टर शक्तिवान हूँ, विजय माला का मणका हूँ, कलप कलप की विजय रतन हूँ, कितने सोमान बाबा ने दिए हैं, 100 से ज्यादा की लिस्ट है। तो उन सोमान को हम स्मृति में जितना जितना रोज लाएंगे, आदत पड़ जाएगी। और उससे फायदा क्या होगा, उससे लाभ ये होगा कि जैसे ही हमारे कर्मेंद्रियां विचलित होंगी, आंख नाक कान, ये स्थूल कर्मेंद्री या सूक्ष्म कर्मेंद्री, मन बुद्धि संस्कार, कोई खाने की चीज में, किसी में, देखने में, कर्म करने में, कहीं भी, तो बाबा ने एक बार बताया था कि बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है, और वैसे टीवी ऑफ रहता है, सब बच्चों के टीवी हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है, वो बच्चा किसी परिस्थिति के वशीभूत हो रहा होता है, तो वो बाबा का टीवी जैसे ऑन हो जाता है, और बाबा देखता है कि ये बच्चा अभी इस परिस्थिति के वशीभूत होने जा रहा है। तो वशीभूत होने से पहले ही बाबा उसकी बुद्धि को टच करता है। आपने महसूस किया होगा, कोई बात होगी और पुराने स्वभाव संस्कार के आधार पर आपकी बुद्धि विचलित हो, मन विचलित हो, कर्मेंद्रियां विचलित हो, तो उस तभी ये भी आता है, नहीं नहीं बाबा ने ये मना किया है, बाबा ने ये कहा है कि हमें बहुत शुद्ध आहार विहार रखना है, तो मन में टच जरूर होगा, वो बाबा टचिंग कर रहा है, लेकिन कई बार हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, चलता कर देते हैं और उन परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं। और जो इस बाबा की टचिंग को, व्यवहार को, जो इसको अपने व्यवहार में ले आते हैं, वो उस कमजोर परिस्थिति से बच जाते हैं। इसलिए आवश्यकता ये है, अगर हमने उस बाबा की, इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, वर्तमान समय बच्चों के ये दो शक्तियां पावरफुल होनी चाहिए, एक टचिंग पावर, एक कैचिंग पावर। बाबा जो टचिंग करा रहा है, हम जो सही बात की बात आ रही है, तो एक तो हम उसको कैच करें और कैच करने के बाद फिर उसे व्यवहार में लाए, तो इससे क्या होगा, संस्कार हमारे खाली बदलेंगे ही नहीं, बदल करने के बाद उस पर जो ठप्पा लगता जाएगा, बाबा ने कहा पक्का ब्राह्मण का ठप्पा, तो उस पक्के ब्राह्मण के ठप्पे के साथ साथ हम विजय के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा आपका मार्ग है परिस्थितियों इनसे विजयी बनना, और मेरा काम है आपको विजय माला में पिरोना, वो मैं करूंगा विजय माला में पिरोने का काम, लेकिन आप परिस्थितियों पर विजय तो प्राप्त करो। जब कभी कोई बात आती है, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कई बार जब हम परिस्थिति पर ध्यान नहीं देते, हमारी स्वस्थिति कमजोर होती है, परिस्थिति हावी हो जाती है, तो क्या होता है, परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं, और जब परिस्थिति के वशीभूत हो जाती है तो बाद में पश्चाताप के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। जब कोई विकर्म हो जाता है, कोई कमजोरी के संकल्प आएंगे, बाबा ने एक बार कहा था, अब बाबा बच्चों को एक तो सर्टिफिकेट अधिकतर बच्चों को दे सकता है कि उनमें विकारी संकल्प नहीं चलते, लेकिन बाबा अभी ये बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि उनमें व्यर्थ संकल्प ना चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, और बच्चों को चलना चाहिए कि व्यर्थ ना चलें, वो तब चलेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे जब वो व्यर्थ संकल्प को भी विकारी संकल्प समझेंगे। जैसे विकारी संकल्प आया, एकदम हम मन से हटाने की बात करते हैं, कहा है संपूर्ण पवित्र बनना है, लेकिन व्यर्थ संकल्प, गर्णा, ईर्षा, द्वेष वगैरह, ये सब भी बाबा ने कहा प्योरिटी नहीं है परफेक्ट, ये भी अपवित्रता है, बोलते हैं तो इसका मतलब वो संकल्प वो भी अपवित्रता है, और जब हम इतना स्ट्रिक्ट होके अपने से रहेंगे तो क्या होगा, फिर वो संकल्प नहीं चलेंगे तो हमें शताब की नौबत नहीं आएगी, बल्कि वो कमजोर संकल्प जब बुद्धि में आ रहा है तो उसी समय बाबा जो टचिंग करा रहा है उसके पास इतनी शक्ति होगी कि उस संकल्प को कैच करके परिस्थिति को बदल लेंगे, और स्वस्थिति जो कमजोर थी और परिस्थिति जो भारी थी, वो हम स्वस्थिति को ऊंचा करते जाएंगे और परिस्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, और स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा के सामने हमने देखा कई बार, बाबा की उम्र भी इतनी थी 90, और सर्दी का मौसम होता था, कई बार खांसी आती थी तो बाबा को गला साफ करने की भी और उसकी जरूरत पड़ती थी, कई बार खांसी इतनी तेज आती थी मुरझाते जाते कि बाबा की आंखें भी जैसे गीली जैसी हो जाती, तो बाबा क्या युक्ति रची हुई थी, संली के पास एक कृष्ण का ट्रांसलाइट का, लक्ष्मी नारायण का चित्र था, तो बस खांसी आई तो खांसी रूपी परिस्थिति ज्यादा बलशाली होती, विकराल होती थी, तो बहुत जब परेशान, तो बाबा कहते देखो बच्चे अभी ये तत्व पुराने तत्वों से बना, तत्व भी तमो प्रधान है, ये खांसी आ रही है, तकलीफ दे रही है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ऐसा खूब खुशी होनी चाहिए कि हम सब जाकर ऐसे सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, नई दुनिया होगी जहाँ ये तत्व भी कोई तमो प्रधान नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं देखा, बस खुशी में रहना चाहिए। तो बाबा ऐसे मौके पर भी तो खुशी में घग्गिया मारने चाहिए, ऐसा करते थे, बहुत खुशी बच्चों को होनी चाहिए। और बाबा स्वस्थिति को मजबूत कर लेते थे और परिस्थिति धीरे धीरे खत्म हो जाती थी और बाबा उससे तुरंत बाहर जैसे निकल आते थे और कुछ रुपयी बाबा फिर मुरली चलाने लगते थे। ऐसे ही हम बच्चों की जब भी कोई परिस्थिति आती है किसी व्यक्ति की तरफ से, तन मन धन की तरफ से, वैभव कोई बात हो, तो हमें ये अपने लिए खुद निर्धारित करना है कि कैसे मैं स्थिति को ऊंचा बनाऊं कि परिस्थिति हमारी गुलाम है। और परिस्थिति जब गुलाम हो जाती है तो ये ही करते 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 व्यक्ति संपूर्णता की तरफ चला जाता है। और बाबा को हम 62 में ज्ञान में आए और बाबा से सौभाग्य हुआ मिला, चाहे कानपुर में आए थे, चाहे दिल्ली में दो बार मेजर की कोठी में और साहब की कोठी में, उसमें वहां पर भी दोनों बार मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन हम अपने को सबसे बड़ा भाग्य वो समझते हैं अपना जब हमें दो दिनों में बाबा से मिलने का सौभाग्य। इंजीनियरिंग पास करके हम बहुत दूर पोस्टेड में, और बाबा ने जैसे युक्ति से हमें अपने पास लिया और 17 जनवरी 1969 को बाबा के पास पहुंच गए। और 17 और 1869 अंतिम दो दिनों में हमें बाबा के सम्मुख रहने का सौभाग्य मिला और बाबा की कर्मा कथा देखने का वो सौभाग्य मिला। उसमें हमने क्या देखा ये गौर से सुनने की बात है, क्योंकि हम सभी अतीत बनना ही है और ये आंखों देखी बात बाबा का है, क्योंकि हम सब जब कर्मातीत बनेंगे तो ब्रह्मा बाबा के कदम रख के ही कर्मातीत बन सकते हैं। तो एक तो हमने ये देखा, पहले जब भी बाबा को मिलते थे तो बाबा से पूछते थे कोई पुरुषार्थ की बात, कोई सेवा की बात, कोई भी बात होती थी, बस उसका जवाब देते, बच्चे ये करो ऐसे हो जाएगा। लेकिन उन अंतिम दो दिनों में जब हम मिले बाबा से, जाते थे बाबा के सम्मुख जाके सोचते ये प्रश्न पूछेंगे, बाबा के तरफ देखा, दृष्टि दी और बस तुरंत बाबा मन की बात को पढ़ लेते थे तुरंत, और बाबा कहते थे अच्छा बच्चे इतने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा मन चल रहा है वो भी बता देते थे और उसका उत्तर भी दे देते, सॉल्यूशन भी दे देते थे। एक बार, बार चार बार टोटल 6-7 बार हम दो बाबा से अलग अलग स्थानों पर मिले। कभी बाबा टहले थे तो बाबा के साथ टहलने में, क्योंकि मौका ढूंढना होता है, कभी बाबा के कमरे में, कभी क्लास के बाद, ऐसे जब होता था तो आश्चर्य लगता था कि मन में संकल्प किया और बाबा पहुंचे, बाबा ने तुरंत उसका समाधान दे दिया। बाद में दादियों से पूछा तो बताया कि देखो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट होती है तो उसके अपने मन में कोई संकल्प नहीं होते, अपने मन के ऊपर उसने पूरी विजय प्राप्त कर ली होती है। जैसे कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि मन इतना उनके कंट्रोल में आ जाता है कि बस दूसरे के मन की बात वो तुरंत पढ़ सकते हैं। उनका मन जैसे एकदम दर्पण हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो दूसरा जो भी आएगा वो उस दर्पण में अपनी छवि देख लेगा, यानी उसके संकल्पों की छवि इनके अंदर आ जाएगी और ये संकल्प को तुरंत पढ़ के उसका फिर समाधान कर लेंगे। जो भगवान के लिए कहते हैं ना, भगवान के सामने भक्त आया, भक्त ने कोई भी इच्छा करी होती है, कई बार तो भगवान के मुंह से क्या आता है, तथास्तु। बस एक ही अक्षर तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो ये स्थिति हमने ब्रह्मा बाबा की अंतिम दो दिनों में देखी और ये स्थिति हम सबके लिए भी सूचक है। बाबा ने भी ये कहा है आप सबको भी ऐसा मास्टर ब्रह्मा बनना है तो बस उससे क्या होगा कि अनेक आत्माएं अंत में आपके सम्मुख आएंगी, दुखी अशांत आत्माएं बहुत इच्छाएं लेकर के, चारों तरफ हाहाकार। अभी की परिस्थिति पिछले साल भर में आपने देखा कैसी रही, भय निराशा इनका वातावरण होगा, आएंगी लेकिन कहने की भी स्थिति में नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका मन इतना निर्मल होगा तो आप तुरंत उनके मन की बात केवल जान ही नहीं लेंगे बल्कि आप उसे शक्ति का वरदान दे देंगे और वो अपनी मनोकामना के संपूर्ण हो गई ऐसा अनुभव करके वहां से चला जाएगा। रोती हुई आत्मा आएगी, हंसती हुई चली जाएगी, अशांत आत्मा आएगी, शांति की स्थिति का अनुभव करती हुई जाएगी। तो प्रैक्टिकल एक तो ब्रह्मा बाबा में ये अनुभव किया, तो हम सबका भी यही लक्षण लक्ष्य होना चाहिए कि एक तो हम इच्छा मात्रम अविद्या होते जाए और जितना इच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे तो स्वस्थिति से शुरू हुआ ये और उससे तो जब पहले स्व परिवर्तन, स्मृति का परिवर्तन, फिर वृत्ति का और फिर अब ये दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि वृत्ति तो फिर भी अंदर है क्या चल रही है लेकिन दृष्टि तो हमारी ये बाहर है। इस दृष्टि के परिवर्तन के साथ साथ हमें ये देखना है कि ऐसा दृष्टि का परिवर्तन हो जो जैसी कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि है हम अक्सर करके ये जो आंख है इसी को ही हम ये समझ लेते हैं लेकिन एक्चुअली देखने वाली ये आंख नहीं है। आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन देखने वाली आत्मा है। तो आत्मा दृष्टा है इसीलिए कहा जाता है साक्षी दृष्टा। अंत में हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी होगी जो साक्षी दृष्टा हो, चारों तरफ जो हमारे निकट के होंगे, मित्र संबंधी होंगे, जो बहुत आत्माएं बिल्कुल भयंकर परिस्थितियों में होंगी, अगर हम साक्षी होकर के उस पार्ट को नहीं देंगे तो उनके दुख में हम भी दुखी हो जाएंगे और उससे क्या होगा, फिर बाबा की याद तो नहीं रहेगी। हम उनकी परिस्थिति में हमारी भी परिस्थिति कमजोर अगर हो गई तो हम शक्ति का दान क्या देंगे। हमें तो हमेशा ऊंची स्थिति में रहना है जिससे कमजोर आत्माएं जो नीची स्थिति में उनको हम शक्ति का दान देते रहे और जो शक्ति का दान देते रहेंगे, जो बाबा अभी कहता है कई बार बाबा कहता है आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, दुखी आत्मा अशांत आत्माएं हैं तो उनकी आवाज सुनोगे तब तुम उन्हें जिसको सुख की आवश्यकता उसे सुख दोगे, जिसे शांति की आवश्यकता है शांति का दान दोगे, जिसे शक्ति की आवश्यकता है उसे शक्ति का दान दोगे। तो ये तब होगा जब हमारे अंदर व्यर्थ संकल्पों का तूफान कुछ नहीं होगा, जब हमारे अंदर हम अंदर से या बाहर से अचल अटोल रहेंगे। तो इसीलिए उसके लिए दृष्टि, तो दृष्टा देखने वाला आत्मा, दृष्टि ये आंख खिड़की है, खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के पीछे खड़े होके हम लोग देखते हैं, व्यक्ति देखता है। फिर तीसरी चीज है दृश्य, जो भी दृश्य संसार में है, जैसे कार में जाओ ट्रेन में जाओ एक दृश्य आया रुकता नहीं है, वो चला गया दूसरा आ गया, वो चला गया तीसरा आ गया, ऐसी हम भी दृश्य को दृश्य समझ करके चलते रहे, कहीं दृश्य में अटके नहीं। कोई मनमोहक दृश्य होता है उसमें अटक जाते हैं और जो कोई खराब दृश्य होता है उससे एकदम मन के अंदर भी दुख की लहर आ जाती है। बाबा कहते हैं नहीं, वो दृश्य आया और गया, चला गया। वो हमारे ऊपर कोई भी ऐसी अटल छाप ना छोड़े, मेरी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि आगे बढ़ते रहे। तो एक दृष्टा, दृष्टि, दृश्य और ये इन बातों का आधार क्या है? इन बातों का आधार ये है हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड। जितना हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, हर दृश्य में हम कल्याण का देखते चले। बाबा ने कहा है, आप ब्राह्मणों का अकल्याण लिखा ही नहीं है, कोई नहीं सकता कभी। तो इसीलिए जब वैसी स्थिति होती है अकल्याण नहीं होने की, तो बस दृश्य आएगा जाएगा, वो हमारे ऊपर कोई परमानेंट छाप नहीं छोड़ेगा। तो दृष्टांत हमारा ये जो है दृष्टिकोण जितना पॉजिटिव होगा, तो ही भक्ति मार्ग में हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे। दृष्टांत मारे हमारा इतिहास। हमें नशा होना चाहिए कि हम इतिहास बनाने वाले हैं, इतिहास पढ़ने वाले नहीं। वो तो दुनिया है जो हमारा इतिहास पढ़ेगी, हम इतिहास बनाने वाले हैं। और जितना जितना हम इतिहास लिखेंगे, इतिहास बनाएंगे, उतना उतना हम दुनिया के इष्ट देव बनते जाएंगे, महान आत्माएं बनती जाएंगी। तो अभी आवश्यकता यह है कि हम अपना ये दृष्टांत, दृष्टि, तब हमारी अंत में साक्षी दृष्टा होगी। कुछ भी होता रहे, हम इतने साक्षी होकर देखेंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, अचल अडोल रहेंगे। बाहर बाबा ने कहा है कि जितनी बाहर अति हलचल हो, उतने आप अंदर से अति अचल होने चाहिए। अति हलचल में अति अचल और अडोल रहेंगे, वो मेरी माला का मणका बनेंगे। और उसके लिए अभ्यास चाहिए, कोई भी चीज के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से ये अभ्यास चाहिए। तो ये दृष्टि हुई, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, और उसके आधार पर फिर जैसी दृष्टि वैसी हमारा कर्म होते चलेंगे। और क्योंकि करते होंगे आधार, जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी, हम तो याद है, हमने देखा रोज भोग लगता था। तो जब भोग लगा चपचुरी, बाबा से बच्चों ने पूछा कि बाबा आप उन समय कह रहे सो रहा था जब आप शरीर छोड़ रहे थे, वो कैसा रहा? तो बाबा ने बड़ा अच्छा बताया कि बच्चे जब अंतिम समय युद्ध चल रही थी अंदर, एक तरफ कर्म भोग की युद्ध, एक तरफ योग बल की युद्ध, बहुत हार्ट में, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो बनेगा ही। और बाबा ने कौन सा कारण सबसे अच्छा होगा, कौन सा है? हार्ट अटैक। तो वही बाबा के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। तो बाबा ने बताया, एक तरफ तो पेन हो रहा था और दूसरी तरफ मैं बाबा को याद कर रहा था, बस मैं आपके पास आ रहा हूँ बाबा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो पहले ये परिस्थिति ज्यादा भयानक थी, बहुत पेन था, स्वस्थिति, मैं बाबा को याद करने का प्रयास, फिर धीरे 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 करके जितना मेरी याद आ रही थी, ये हार्ट का पेन तो बहुत था, लेकिन पेन की महसूसता धीरे 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 कम होती गई बहुत। और जब ये महसूसता कम होती चली गई, होती चली गई, तो मुझे अनुभव होने लगा कैसे आत्मा शरीर से अपने को धीरे 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 रोक रही है, खींच रही है, पैर के अंगूठे से मुझे अनुभव, धीरे धीरे वो अनुभव होते होते आत्मा जैसे के बीच में सारी शक्तियां केंद्रित हो गई। फिर बाबा ने दादी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए, शक्तियों का दान करते हुए, पूरा विल करते हुए, फिर बाबा ने जैसे, तो ये शरीर छोड़ने की भी विधि है। बच्चे कुछ है, जितने भी हिसाब किताब है वो ऐसे होंगे, का ये आपका अंतिम पेपर है, तो इसलिए ये हमारा जो पेपर होगा, इस पेपर होना चाहिए। और इस पेपर के लिए तैयारी कौन सी चाहिए है, ये तैयारी मैं बहुत समय से कर रहा था कि जब चाहे शरीर में आऊं और जब चाहे चला जाऊं। जब कोई भी बात, फॉर एग्जाम्पल, कोई हमने आने वाली होती थी, उसे 10 बजे का टाइम दिया है, अब बाबा कमरे में इंतजार कर रहे हैं, अभी 5 मिनट है, तो बाबा अपने शरीर से जैसे विड्रॉ कर लेते थे आत्मा, तो जब कभी टीचर संदेशी टीचर इंचार्ज ब्राह्मणी आती भी थी, सामने भी हो जाती थी, तो बाबा की आंखें भी खुली हैं, ये अपने ड्रॉ किया हुआ देखते हुए भी बाबा नहीं देखते। जब बाबा तो बाबा एक वैसे चले आते, हाँ बच्ची बाबा मैं फल पार्टी लू, हाँ लेके आओ। वो आती थी पार्टी लेके, कमरे में सब बैठते थे, फिर बाबा के समय बात करना होता था। और बाबा को तो मालूम है, बाबा बस आते थे, बच्चे बाबा आओ, बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, प्यारे बच्चे, बस बाबा करते थे। तो हम चुंबक की तरह जैसे खींच के बाबा की बाह में आ जाते थे। फिर आने के बाद एक ये विचित्र अनुभव होता था, विदेही से जैसे न्यारी। कोई उस समय ज्ञान नहीं होता था, पहले इतना सारा ये ज्ञान की गुह्यता भी नहीं थी, नहीं होती थी कि बाबा के टच से बाबा दृष्टि एकदम विदेही हो जाते थे, थोड़ी का प्रेम का अनुभव करते थे। फिर बाबा बच्चे आओ 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 बच्चे, जैसे फिर हम श्री में आने का कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए देह ड्रॉन हो जाती थी देह से। फिर आते थे, बाबा टोली खिलाया, हालचाल पूछे, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, इस पर सब मिला करते थे। तो ये है अनुभव कराना, जो बाबा चाहते हैं अब बच्चों को भी, कि बच्चे भी यही कराए। तो स्मृति वृत्ति दृष्टि और ये कृति तक आ जाते हैं, और इससे ही फिर हमारी प्रवृत्ति बदल। तो है एक तो घर की प्रवृत्ति, ये है लौकिक प्रवृत्ति, फिर एक अलौकिक प्रवृत्ति परिवार है। तो लौकिक प्रवृत्ति हम जाने, कोई क्रोध करेगा हमें कोई खास महसूसता नहीं होगी, सोचेंगे ये तो अज्ञानी है, अज्ञानी कर रहा है। लेकिन अगर ज्ञानी आत्मा भी ऐसी बात करती है तो हमें भी महसूस हो रहा है ऐसे कर रहा है। तो इस कारण से हमें अपनी ज्ञानियों की प्रवृत्ति, क्योंकि रहना तो अंत है, ज्ञानियों के साथ तक ही रहना है, और सतयुग में साथ ही रहेंगे, इसीलिए वो हमारे समय प्रति समय दृष्टि बिल्कुल बननी ही चाहिए दैवी परिवार के साथ। और उससे जब प्रवृत्ति बन जाती है तो प्रवृत्ति के साथ फिर हमारा संसार जो है ना अंत में वो बदल जाता है, और अंत की जो स्थिति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि अपने अंत का भी मालूम नहीं है, तो इसीलिए हमें समय चाहिए, क्योंकि अंत समय जब शरीर से आत्मा निकलती है तो कहते हैं उसे वो स्मृतियां आती हैं जीवन भर की, जिससे बहुत लगाव होगा, झुकाव होगा, घृणा या ईर्ष्या, तो वो आएगा याद में। तो वो अगर अंत में वो याद आया तो अंत मते सो गति तो वो हो जाएगी। इसीलिए वो बिल्कुल भी याद ना आए, और हम बस बाबा की स्मृति में रहें। और ये हमने देखा तो बाबा ने एक दो साल पहले से बहुत समेटना शुरू कर दिया था। पहले बाबा बहुत अच्छी तरह मिलते थे, खेलते थे, ले जाते थे घुमाने, धीरे धीरे करके, और लास्ट के दो दिन का तो मैंने आपको बताया, एक अक्षर भी बाबा ने पूछा नहीं, अंदर की बात जानी, सबको पत्र लिख करके सबके जवाब दे दिए। और लास्ट में बाबा ने उस दिन का, आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब 7 बजे आ जाए, रोज 9 बजे क्लास होती थी, और खास इंस्ट्रक्शन दी बाबा ने, आज सब भोजन करके आए। तो सब भोजन करके आए थे, तो बाबा को पहले से आभास था कि मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो इस कारण से यही इच्छा मिलती है भीष्म पितामह की बात जो है। तो इसीलिए हम सबको भी ये आभास रहना चाहिए, अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। और जब ये आभास रहेगा अंत समय, तो बाबा को जैसे ये आभास था, बाबा क्लास में आए, बाबा ने मुरली चलाई, और उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई न कफ आया। तो ये इस बात का सूचक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार भी कर्म भोग खांसी ये किसी कोई तकलीफ नहीं हुई, और फिर बाबा ने मुरली चलाई, और मुरली के बाद बाबा बाहर गए। और अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह करके बाबा बस चले गए, और कमरे में जाके बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन ब्यूटी ये थी कि जब शरीर छोड़ा तो भी शरीर लगभग 60-65 घंटे तक रखा रहा, 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 जनवरी को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी, जब टूर से आई उसके बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई शरीर के अंदर दुर्गंध नहीं थी, लाइट का शरीर एकदम लगता था जैसे बाबा सदा की भांति सो रहे हैं। तो इतना ये प्रकृति पर भी विजय, पांच तत्वों पर भी विजय। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे भी आत्मा को तो पवित्र बना ही रहे हैं योग बल से, लेकिन प्रकृति के तत्वों को भी विजयी बनाए। तो इसकी विधि यही है कि रोज प्रकृति को भी हम कुछ मिनट योगदान करें, जिससे ये प्रकृति अंत समय तक हमारा साथ दे। और जब प्रकृति अंत समय साथ देगी, उसकी निशानी क्या होगी कि समय पर प्रकृति हमें टचिंग कर देगी कि अभी ये परिस्थिति आने वाली है, और हमारे पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली अर्थक्वेक हो, चाहे सुनामी हो, चाहे फ्लड हो, चाहे सूखा हो, कोई भी परिस्थिति होगी, लेकिन हमें इनडायरेक्टली जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान होगा, हमारी बिना इच्छा के हम ये शरीर नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तब होगा जब हमने प्रकृति को भी दान किया होगा, और ये पांच तत्वों का शरीर जो है ये अंत समय साथ देगा, और बस बाबा की तरह हम भी इस शरीर से निकल के आत्मा पवित्र बन के। बाबा ने कहा है परम धाम में अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती, इसीलिए जब ये आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, वो है कर्मातीत अवस्था की निशानी। अंत में एक मामा की बात कहके मैं समाप्त करता हूँ। तो जब मामा ने शरीर छोड़ा था, उस समय मामा जब गई वतन में, तब तो साकार बाबा थे, तो वहां पर वतन में अव्यक्त बाप दादा ने वहां पर सूक्ष्म ब्रह्मा के शरीर में से बाबा ने प्रवेश करके पूछा, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मामा चुप रही, और मामा ने कहा, बाद में जब बाबा ने पूछा तो मामा ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं किया कर्मातीत स्थिति का अनुभव। तो बाबा ने कहा, जाओ अभी नीचे तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में वहां रखा हुआ है, सब योग कर रहे हैं, तुम जाके उस शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा फिर गई नीचे, और थोड़े समय के बाद मामा जब ऊपर वापस आई तो बाबा ने पूछा, वो स्थिति का अनुभव किया कि नहीं? बाबा मैं तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मैं गई उस शरीर में, तब शरीर तो पूरा ठंडा हो चुका था, और शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई, चुरपुर नहीं हुई, और मैंने प्रयास किया लेकिन शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, तो इसलिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर पाई। तो तब बाबा ने कहा था, देखो बच्ची, हरेक की कर्मातीत अवस्था भी अपनी है, और अब उस कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, उसमें पुरुषार्थ करोगी, और वो पुरुषार्थ करके जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगी, तब फिर सब परम धाम, क्योंकि वो तो पवित्र घर है, जहां वहां से जैसे हम आए थे वैसा ही होकर हमें जाना है, तो वहां जाएंगे, और उसके बाद फिर तब ये परम धाम के गेट खुलेंगे। इसीलिए हम सबको कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए, चाहे जितना भी शरीर में व्याधि हो, कष्ट हो, संबंधों में कटुता हो, दुखी होकर ये नहीं कि ये बस शरीर छूटे, चलो दूसरा शरीर लेंगे, नहीं, वो तो सारे 10-8 साल बेकार भी हो जाएंगे, और कलियुगी दुनिया है, दुख तो वहां भी होगा ही। तो इसीलिए बाबा कहता है ये शरीर इतना वैल्यूबल है, कभी भी ये संकल्प ना आए कि मुझे ये शरीर छोड़ना है, और बाबा बस मुझे इससे छोड़, नहीं, बाबा जैसा भी है इस शरीर के द्वारा ही आप मिले हो, और इस शरीर के द्वारा ही अंत समय तक हम कर्मातीत बन के और वापस चले आपके साथ। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत ही गहराई में जाकर आदरणीय भाई साहब ने हमें जो बाबा और मम्मा की कर्मातीत अवस्था के बारे में स्पष्ट किया, ऐसे लग रहा था वो साकार अनुभव हम साथ साथ करते जा रहे हैं। मैं समझती हूँ आप सबका भी ऐसा ही अनुभव होगा। चंद लाइनें इनके लिए। साकार बाबा के अर्थ की, साकार बाबा के पुरुषार्थ की विधि हमको सुनाकर, साकार बाबा की मीठी यादें हमको लाई। किन शब्दों में करे धन्यवाद आपका, किन शब्दों में करे धन्यवाद आपका। पुरुषार्थ सहज प्राप्त से हम सब कर्मातीत बनी, यही हमको बताई, युक्ति हमको बताई। अभी 7:30 तक योग चलेगा, उसके बाद अपना कोई अनुभव सुनाना चाहे भट्टी से संबंधित तो अपने बताए।
Thank you.